कोई एक विधवा माता का ये सवाल है कि विधवाओं के विषय में आप जो है तो कहें, विधवाओं का क्या कर्तव्य है और विधवाओं को अपना जीवन किस प्रकार से बिताना चाहिए और विधवाओं के साथ में हम लोगों को कैसा व्यवहार करना चाहिए इत्यादि जो बातें हैं वो कही जाती है। विधवा माताओं को क्या करना चाहिए इस विषय के बीच के वहां हमारे शास्त्रों में ये बात बतलाई है, उनको अपना जीवन जो है तो त्याग पूर्व बिताना चाहिए। जिस प्रकार से थी सन्यासी जो होते हैं जिन्होंने एक प्रकार से विधिवत सन्यास लिया है और सब कुछ त्याग करके के और वन में जाकर के रहते हैं और अपना जीवन जो है परमात्मा की प्राप्ति के लिए अर्पण कर दिया है, जिन्होंने बाहर और भीतर का त्याग कर दिया है, इस प्रकार से थी आपने विधवा माताओं को जीवन बिताना चाहिए। उनको सन्यास आश्रम ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, घर के मां ही एक प्रकार से थी वो सन्यास नहीं है, यानी भोगों का त्याग कर देना चाहिए, श्रृंगार का त्याग कर देना चाहिए, श्रृंगार करने वाली स्त्रियों के पास में कभी नहीं बैठना चाहिए। यदि काम पड़ जावे तो मन के बीच के मां वैराग रखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि ये जो श्रृंगार है ये मेरे लिए कलंक है। जैसे पतिव्रता जो स्त्री है पति के विदेश जाने पर वह श्रृंगार का त्याग कर देती है और विधवा माताओं को तो सदा के लिए श्रृंगार का त्याग कर देना चाहिए। जो नारी विधवा होकर श्रृंगार करती है उसका जन्म है तो दूषित हो जाता है, उसमें कोई बुरी अश्लील घटना घट जाती है। जैसे सुहागन जो माताएं हैं उनके लिए थोड़े श्रृंगार बतलाए गए, उनमें एक भी श्रृंगार जो है तो विधवा स्त्री को नहीं करना चाहिए। यहां तक बतलाता है शास्त्र की जो केश भी नहीं रखने चाहिए, किंतु आजकल के समय के बीच के मां दूसरे लोग जो है तो विशेष एक प्रकार से थी आपने निंदा करेंगे, इस दृष्टि से थी केश रख लिए जावे किंतु उसको आपने स्वागत स्त्रियां जिस प्रकार से थी श्रृंगार करती है उस प्रकार केशों का श्रृंगार नहीं करना चाहिए। उनको हाथों के बीच के मां चूड़ी रखने के लिए भी शास्त्र निषेध करता है, किंतु लौकिक व्यवहार को देख कर करके के एक प्रकार से साधारण जो एक चूड़ियां पहन ली जावे किंतु वो चूड़ियां कांच की नहीं होनी चाहिए, हाथी दांत की नहीं होनी चाहिए। आगे तो समझो कि विधवा जो स्त्री है वो चांदी की चूड़ी पहना करती थी, नारियल की चूड़ी पहना करती थी, किंतु आजकल वो देखने में वो बात नहीं आती है, वो स्त्रियां सोने की चूड़ियां पहनती है। ऐसी अवस्था के बीच के मां जो शास्त्र कहता है कोई प्रकार की चूड़ी नहीं पहननी, ऐसा यदि हो सके शास्त्र की मर्यादा के अनुसार तो बहुत उत्तम ही है, बिल्कुल चूड़ी का न पहनना सब प्रकार से उसके लिए उत्तम ही बात है। और वस्त्र जो है समझो कि सफेद पहनने के लिए शास्त्र बतलाता है, उसके बीच के मां थोड़ा समझो कि मंद जो रंग है जिससे मोतिया है या एक प्रकार से फिरोजिया है, मामूली सा रंग एक प्रकार से, इसलिए लगा दे रहे कि दूसरे उसका कोई अपवाद न करे, लोग के बीच के मां जो दूसरे आदमी निंदा न करे, ऐसे साधारण वस्त्र पहनने चाहिए। वस्त्र जो है सो हाथ के बने हुए होने चाहिए, मोटे होने चाहिए, जिससे स्वाभाविक की बहिराग उत्पन्न हुए, खर्च भी कम लगे और इसके बीच में शांति सुविधे। इस प्रकार से हाथ के बने हुए देसी वस्त्र पहनने चाहिए। नील के वस्त्र कभी नहीं पहनने, लील के कभी नहीं पहनने और बिलासी तो पहनने ही नहीं। समझो कि जो चरी के जो वस्त्र हैं और गोट के जो वस्त्र होते हैं, गोटे के होते हैं, किनारी के होते हैं, और समझो ऐसे जो वस्त्र हैं वो तो खतरनाक है, उसके लिए कलंक लगाने वाले हैं ऐसे वस्त्र, तो उनको तो कभी छूना ही नहीं, देखना ही नहीं, दूर से उसका त्याग कर देना चाहिए। और आभूषण तो उनको पहनना ही नहीं चाहिए, ये तो स्वागत स्त्रियों के लिए है, उसको तो ये समझना चाहिए कि ये जितने जो श्रृंगार हैं ये हमारे लिए कलंक। जैसे आंखों में काजल या सुरमा घालना या समझो कि मेहंदी लगाना आदि जो अनेक प्रकार के जो श्रृंगार जो बतलाए गए हैं उन्हें को दूर से त्याग कर देना चाहिए और चित्त के बीच के वहां खूब बैराग रखना चाहिए, जहां तक हो सके भूमि पर शयन करना चाहिए या कोई कमल या चटाई बिछा करके भूमि पर शयन करना चाहिए। और बीमार पड़ जावे तो कोई पाटे पर भी सो सकती है, ऐसे भी पाटे पर सोए तो कोई इतनी पाप की बात तो नहीं है, किंतु भूमि पर चटाई बिछाकर कमल बिछाकर सोना और भी उत्तम बात है। बढ़िया जो समझो पलंग है, ढोलिया है, उस पर कभी नहीं सोना चाहिए। भोजन के लिए सात्विक भोजन करना चाहिए और साधारण भोजन करना चाहिए, कम से कम दामों के बीच के मां जो एक काम या शरीर का निर्वाह हो जावे, काम चल सके, ऐसा भोजन करना चाहिए। जैसे समझो कि आपने खिचड़ी है या चावल दाल है या रोटी है या हल्का है, इत्यादि जो ये साधारण जो भोजन है अपने करना चाहिए। बढ़िया जो भोजन है जैसे समझो कि मलाई खाना, मिठाई खाना या एक प्रकार से दूध पीना या जो एक बढ़िया बढ़िया जो भोजन करना, मिष्ठान जो है, मेवा जो है, बाणस जो है, दामी जो चीज है, उसका सेवन ध्यान तक नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से कोई प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए, यानी चौपड़ता खेलना या मादक वस्तु का सेवन करना, क्षेत्र तमाशा देखना, विवाह आदि के मां भी जहां तक शामिल नहीं होना चाहिए, दूर ही रहना चाहिए। जो गाजा बाजा विवाह शादी उत्सव जो है एक प्रकार से मेरे इत्यादि से दूर रहना चाहिए। जैसे साधु महात्मा लोग एकांत में रह करके अपना भजन ध्यान करते हैं, इस प्रकार अपना जीवन बिताना चाहिए। एकांत के बीच के मां रह करके भगवान के नाम का जप करना चाहिए, कम से कम 22,000 नाम तो रोज उच्चारण करने ही चाहिए, उससे अधिक हो जावे तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो बतलाया जाता है कि 22,600 रोज मनुष्य को आते हैं, तो इतने नाम तो जपने ही चाहिए। श्वास के साथ के मां नाम का जप बहुत ही उत्तम है, और नहीं तो वाणी के द्वारा नाम का जप करना चाहिए और मन से उस परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। सब जगह के मां निराकार रूप से भगवान विराजमान हो रहे हैं, उस निराकार स्वरूप का ध्यान करना या समझो कि साकार के सहित निराकार का ध्यान करना या सगुण साकार का ध्यान करना, भगवान श्री राम का, श्री कृष्ण का, श्री जो की विष्णु भगवान का, जिसमें प्रीति होवे, श्रद्धा होवे, रुचि होवे, उसी स्वरूप का ध्यान करना, उसी के नाम का जप करना और संयम से रहना चाहिए, वाणी का संयम रखना चाहिए, ऐसे वचन बोलने चाहिए जो सत्य हो, प्रिय हो, हितके हो, और कम बोलना चाहिए। इस प्रकार से वाणी का संयम करना चाहिए और वाणी के द्वारा समझो कि पुस्तकों का स्वाध्याय करना चाहिए, पुस्तक जो धार्मिक विषय की, भक्ति के विषय की, अध्यात्म विषय की जो पुस्तकें हैं उनको पढ़ना, उसके अर्थ के मां मन लगाना, जैसे गीता, रामायण, भागवत आदि जो ग्रंथ है उनका अर्थ समझने के मां ज्यादा समय लगाना चाहिए। बहुत सी माताएं जो है नवान करती है, 9 दिन में रामायण पूरा कर देती है, इसी प्रकार से बहुत से जो भाई लोग जो है अपने गीता का 18 अध्याय का पाठ करते हैं किंतु अर्थ नहीं समझते, उसकी अपेक्षा अर्थ के सहित करना ज्यादा महत्व की चीज है। एक भाई 18 अध्याय का या एक बहन 18 अध्याय का नित पाठ करती है, अर्थ नहीं समझती, और दूसरी अर्थ और भाव के सहित 1 अध्याय का पाठ करती है, वो 1 अध्याय का पाठ करने वाली उससे श्रेष्ठ है। इसी प्रकार से थी समझो कि रामायण जो है 9 दिन के बीच के माँ आपने पूरी करे और अर्थ नहीं ऐसा करे तो उसकी अपेक्षा 1 महीने के बीच के माँ जो पूरी करके अर्थ सहित पढ़े तो वो ज्यादा अच्छी है। तो अर्थ सहित जो है सो इनका स्वाध्याय करना चाहिए और इंद्रियां जो है और मन जो है इनको विषयों से रोकना चाहिए। संसार के जो विषय भोग है इनकी तरफ जो हमारी इंद्रियां जो जा रही है इन्हें को वहां से रोक कर करके अपने कब्जे में करने चाहिए। ये नहीं कि किसी पुरुष को देखा हमारे नेत्रों की वृत्ति उसकी तरफ चली गई तो ये हमारे लिए कलंक। इसी प्रकार से थी समझो कि किसी खाने के पदार्थ को देखा और उसको देख करके हमारा मन चला गया और खाने की इच्छा हुई स्वाद की दृष्टि से थी तो वो उसके लिए खतरे की चीज है। संसार के विषय भोगों का, इंद्रियों के जो जितने विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनका त्याग करना चाहिए और यदि इनका सेवन किया जावे तो राग द्वेष को त्याग कर करके शरीर निर्वाह की दृष्टि से उनका सेवन करना चाहिए। भोजन करने के समय के बीच के माँ एक प्रकार से साधारण पदार्थ जो हम भोजन करते हैं उस समय के बीच में भी हम लोगों को यह सोचना चाहिए, माता बहनों को यह सोचना चाहिए कि उनके बीच के माँ स्वाद बुद्धि तो नहीं है ना। भोजन में स्वाद जो बुद्धि है वो खतरे की चीज है, उससे काम दीपन होता है। भोजन क्यों करना चाहिए? शरीर के निर्वाह के उद्देश्य से करना चाहिए और कोई प्रयोजन नहीं, शरीर को पुष्ट करने के लिए नहीं, शरीर को एक प्रकार से आरोग्य बनाने के लिए भोजन करना चाहिए, शरीर की रक्षा के लिए भोजन करना चाहिए और कोई प्रयोजन नहीं। मन जो हमारा इधर उधर घूमता है उसको संसार से हटा करके भगवान के मां जाकर के लगाना चाहिए, गीता रामायण के पढ़ने में जाकर के लगाना चाहिए, भगवान के नाम के जप में जाकर लगाना चाहिए, मानसिक पूजा में जाकर के लगाना चाहिए। अपना जो जीवन है तो एक प्रकार से थी इस काम में लगाना चाहिए कि भक्ति और ज्ञान और वैराग और सदाचार के मां लगाना चाहिए, भक्ति ज्ञान वैराग और सदाचार में अपना मन लगाना चाहिए और इस विषय में विशेष ध्यान देना चाहिए कि ब्रह्मचर्य का जो पालन है ये उनके लिए एक प्रकार से समझो कि आभूषण है। किसी भी प्रकार से भी अपना ब्रह्मचर्य नष्ट न होए इसकी विशेष रक्षा करनी चाहिए। दूसरे जो पुरुष हैं वे एक प्रकार से अपना मन बिगाड़े तो उनकी कभी बात नहीं सुननी चाहिए। आजकल बहुत से ऐसे पुरुष हैं कि विधवा माता बहनों को उकसाते हैं कि तुम दूसरा विवाह कर लो, उकसाते हैं कि तुम अपने किसी के साथ चली जाओ। तो ये एक प्रकार से थी समझो कि उस विधवा माता के लिए अपने घोर पतन का उपदेश है। यानी ऐसी बात कभी कानों से नहीं सुननी चाहिए, और सुन करके के कोई सुना दे तो समझना चाहिए कि आज तेरा बड़ा दुर्भाग्य था कि ये बातें तुम्हारे को सुनने के लिए मिली। ऐसे पुरुषों का कभी दर्शन भी नहीं करना चाहिए जो ऐसी शिक्षा देते हैं। स्त्री के लिए समझो कि जैसे स्वागत स्त्री के लिए जैसे पार्थिवर धर्म है, ऐसे विधवा माता के लिए ब्रह्मचर्य से रहना और अपने सतित्व धर्म का पालन करना उनके लिए सबसे बढ़कर के चीज है। जैसे पतिव्रता स्त्री पार्थिवर धर्म से परम गति को प्राप्त हो जाती है, इसी प्रकार से विधवा माता वेद धर्म का पालन करके परम गति को प्राप्त हो जाती है। और उनको किस प्रकार से अपना जीविका करके के अपना जीवन बिताना चाहिए। एक नंबर बात तो यह है कि अपने पीर में या ससुराल में जहां उनका रहना हुए, और समझो कि वहां रह कर करके अपना जीवन बिताना चाहिए। पीर के बीच के वहां अपने जो बड़े भाई या अपने पीर के बीच में जो पिता जीवित होवे तो उनके शासन के मां रहना चाहिए। ससुराल के बीच के मां अपने ससुर होवे या अपना जेठ होवे या देवर होवे अथवा अपना समझो कि साबालक पुत्र होवे तो उनकी नजर के मां रहना चाहिए, उनके शासन में रहना चाहिए। जैसे लड़के का और देवर का यह कर्तव्य बतलाया गया है कि लड़के की तो माता है ही किंतु देवर के लिए वो माता के तुल है, तो उनकी सेवा करना और उनकी आज्ञा का पालन करना जैसे उनका धर्म है, इस प्रकार से थी घर के मां जो अपने माता है भाभी है उसका यह कर्तव्य है कि वो अपने घर के मां जो पुरुष है उनके शासन के बीच के मां रहना, क्योंकि स्त्रियों के बीच के मां बुद्धि और विद्या कम होती है, इसलिए पुरुषों के शासन के मां रहना चाहिए। और बाहर के मां अपने घर के पुरुषों के बिना अकेली बाहर में नहीं जाना चाहिए, चाहे तीर्थ जाना हो, सत्संग में जाना हो या कहीं भी जाना हो। आजकल के समय के बीच के मां समझो कि माता बहनों को जो है अधिकांश घर में ही रहना चाहिए, और भगवान की भक्ति घर के मां रह करके करनी चाहिए। जैसे एक प्रकार से एक बहन जो है विधवा बहन मंदिरों के मां जाकर के और भगवान की अपने सो पूजा करती है, और एक बहन अपने घर को मंदिर बना करके और अपने घर के मां ही भगवान की मूर्ति रख करके पूजा करती है, तो घर के मां जो मूर्ति रख करके पूजा करती है वो श्रेष्ठ है। क्यों कि मंदिर के बीच के मां तो समझो कि आजकल सब मंदिरों के मां समझो कि उनके जो अभिभावक हैं, पुजारी हैं, पंडे हैं या कोई भी हो, एक प्रकार से थी सब चरित्र आपने सब जगह नहीं मिलते, इस कारण से थी उसके मां दूषित भाव आ जाता है। इसलिए एक प्रकार से घर के मां रहकर करना उससे ज्यादा अच्छा है, उससे भी ज्यादा अच्छा है कि उसे भगवान की मानसिक पूजा हम करें, मन से भगवान के स्वरूप की स्थापना कर करके और मानसिक सामग्रियों के द्वारा और मन से अपना एक मानसिक स्वरूप की कल्पना करके और अपने मानसिक क्रिया तो करें तो ये और भी उत्तम है। चाहे उस भगवान का स्वरूप हम सन्मुख देखें, चाहे अपने हृदय के बीच के मां हृदय को एक प्रकार से अपने मंदिर बना करके उसमें भगवान की मूर्ति की स्थापना करके मानसिक पूजा करें वो सबसे उत्तम है। या सारी दुनिया के बीच के मां भगवान विराजमान हो रहे हैं, सबके हृदय के बीच के मां भगवान विराजमान हो रहे हैं, ऐसा समझ कर करके सब में नारायण समझ करके हम सब की सेवा करें वो पूजा व्यापक पूजा तो है। इसीलिए भगवान ने गीता की 18वें अध्याय के 46 के श्लोक में कहा है, ये प्रवृत्तिर भूतानां येन सर्वमिदं गतं स्वकर्मणा तं व्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमात्मा से यह सारी संसार जो उत्पन्न हुई है और जो परमात्मा इस संसार के मां व्यापक है, उस परमात्मा को अपने कर्मों के द्वारा पूज करके मनुष्य परम गति को प्राप्त हो जाता है, परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो इसका अभिप्राय यह है कि जैसे मनुष्य पुरुष जो अपने कर्मों के द्वारा भगवान की पूजा करता है, ऐसे स्त्रियां अपने कर्मों के द्वारा भगवान की पूजा करें, यानी सब में भगवान समझ करके और उनको सुख पहुंचावे, उनकी सेवा करे। इस प्रकार से ती अपने कर्म करने से ही इससे उसकी आत्मा शुद्ध होकर के परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ख्याल रखना चाहिए जो अपने घर के माँ जो रह करके भोजन करती है, उस भोजन से दूना काम घर का करना चाहिए, तब एक प्रकार से उसका हमारे ऊपर ऋण नहीं होता बल्कि हमारे द्वारा सेवा हो जाती है। बात यह है कि दूसरों से सेवा करवानी नहीं चाहिए बल्कि दूसरों की सेवा करनी चाहिए। सेवा करवाने से ती उसके सिर पर भार बढ़ता है, ऋण बढ़ता है, और सेवा करने से ती समझो कि आपने जो हम भोजन जो करती है उसका एक प्रकार से मूल हो जाता है और अधिक सेवा हो जाती है, जिससे ती अपनी आत्मा शुद्ध होकर के पवित्र होकर के अपनी आत्मा का कल्याण हो जाता है। और उच्च भाव से सेवा करनी चाहिए, सब में भगवान विराजमान है इसलिए सबकी सेवा करनी चाहिए। जो अपने से जो छोटे हैं एक प्रकार से उनके साथ में वात्सल भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए, जैसे यशोदा माई श्री कृष्णचंद्र जी की सेवा करती थी वात्सल भाव से थी। और जो अपने बराबर अवस्था वाले हैं उनके साथ के माँ समझो की सच्चे भाव से सेवा करनी चाहिए, जैसे समझो की गोपियां भगवान श्री कृष्ण जी की सेवा करती थी, सखियां जो है और सखे लोग भी जिस प्रकार से सेवा करते थे इस प्रकार से सेवा करनी चाहिए अपने घर के भी सेवा, क्यों भगवान तो सब में है ही। और जो अपने से बड़े हैं गुरुजन जो है समझो की पीर के बीच के माँ, माता पिता और भाई और समझो की बुझाई, और ससुराल के बीच के माँ समझो की अपने दुरानी और देवर, जेठ और जेठानी, सासू और ससुर, जो जितने अपने बड़े हैं नंद आदि, उन्हें की इसी प्रकार से सेवा करनी चाहिए। छोटों की जो सेवा है वो वात्सल्य भाव से, और बराबर वालों की जो सेवा है वो सच्चे भाव से, और जो बड़े हैं उनकी सेवा श्रद्धा पूर्व के पूज्य भाव से करनी चाहिए। इस प्रकार से सबकी सेवा करनी चाहिए। भीतर से तो ये समझना चाहिए कि सब में भगवान विराजमान है, मैं भगवान की सेवा कर रही हूँ, और ऊपर का जो व्यवहार है वो एक प्रकार से यथा योग होना चाहिए। छोटों के साथ के बीच के माँ, बालकों के जैसा सामान वालों के साथ के माँ समझो की अपने मित्रता का, और बड़ों के साथ के बीच के माँ श्रद्धा पूर्वक पूज्यता का व्यवहार होना चाहिए। सेवा करने के समय में खूब आनंद मानना चाहिए, खूब हर्षित और आमोद और प्रमोद करना चाहिए। इस प्रकार के करने से बार बार रोमांच होने लगते हैं, शांति मिलती है, चित्त में प्रसन्नता होती है, तो वो सेवा भी एक प्रकार का साधन समझा जाता है। जैसे भजन ध्यान करने से आत्मा शुद्ध होती है, इसी प्रकार निष्काम सेवा से भी आत्मा शुद्ध होती है, बल्कि ध्यान से भी इसका दर्जा ऊंचा बतरा है। गीता अध्याय 12 श्लोक 12 के उत्तरार्ध के बीच के माँ भगवान कहते हैं कि ध्यानात कर्म फल त्याग त्यागा शांति अंतरम, भगवान का जो ध्यान है उससे भी तुम जो कर्म फल के त्याग की महिमा गाई कि कर्म करे किंतु निष्काम भाव से करे, कर्म का जो फल है वो नहीं चावे, सेवा तो करे किंतु फल नहीं चावे, स्वार्थ का त्याग करके सेवा करी जावे, तो वो एक प्रकार से उसका जो फल है वो एक ध्यान से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग के अनंतर शांति मिलती है, इसलिए उसकी महिमा विशेष बतलाई है। तो त्याग पूर्व घर वालों की सेवा करना बड़े महत्व की है। तो चीज आप ख्याल करके देखो, कुंती एक विधवा स्त्री थी, उन्होंने अपना जीवन जो है तो सारा त्याग में बिताया। उनके पति के मरने के बाद कुंती अपने पुत्रों को लेकर के और हस्तिनापुर के मां आई और अपने पति की हड्डियों को भी साथ के मां लेकर के आई और यथा योग प्रकार से थी समझो कि उनके संस्कार अपने पति के किए और उसके बाद के मां अपने पांचों पुत्रों का पालन किया और समझो कि खटियंत्र रख करके राजा दुर्योधन ने और धृतराष्ट्र ने समझो कि लाखा भवन में भेजकर उनको आग लगाने की तस्वीर करी। उस अवस्था के बीच के मां कुंती देवी और समझो कि पांचों पांडव उसे आग से बचकर करके चले गए और समझो कि एक चकरा नगरी के मां जाकर के और एक ब्राह्मण के घर के मां गुप्त रूप से रहने लगे दुर्योधन के भय से धृतराष्ट्र के भय से कि उनको मालूम हो जाएगा तो वे हम लोगों को मरवा देंगे। वहां उस कुंती का जीवन कितना पवित्र बीतता है, किस प्रकार से थी आपत्ति काल के मां विधवा स्त्रियों को कुटुंब वाली विधवा स्त्रियों को अपना जीवन बिताना चाहिए, ये कुंती देवी से शिक्षा लेनी चाहिए। उसके जो पांच जो पुत्र हैं वे समझो कि वन में जाकर फल मूल कंद लाते थे और एक प्रकार से भीमसेन की खुराक अधिक थी इसलिए जो कुछ लाते थे आधा तो भीमसेन उसमें खा लेता था और आधे के बीच में चार भाई और माँ ये उसका हिस्सा करके अपने भोजन किया करते थे। एक दिन की बात है कि उस ब्राह्मण के ऊपर आपत्ति आ गई, उसे राजा के राज के मां एक राक्षस रहता था जिसका नाम था बकासुर। वो नित प्रति एक आदमी को खाता था और एक भैंसे को खाता था और एक गाड़ी जो है समझो कि अनाज की उसको रांध करके उसको अपने राक्षस को खिलाया जाता था और उसे शहर में बहुत से घर थे। आज जिसकी पारी आ गई उसकी 12 महीना के बाद फिर पारी आ गई तो उस वो पारी जो है उसे एक प्रकार ब्राह्मण की आ गई जिस घर में रहते थे। रात्रि के समय के बीच के मां सायंकाल में वो आकर के प्यादा कह गया कि कल तुम्हारी पारी है तो तुम एक प्रकार से एक मनुष्य को भेजना और एक भैंसे को और एक गाड़ी बाकरा। ये नियम था कि यदि वो नहीं भेजता तो राक्षस आकर के उनके घर के वहां सबको खा जाता था। ये कानून उस दुष्ट राजा ने बना रखी थी। रात्रि का समय समझो कि ब्राह्मण देवता और ब्राह्मणी और घर के लोग सब रोने लगे। उसके रोने की आवाज सुनकर के समझो कि वो कुंती देवी जाग उठी। कुंती आपने कुटिया के पीछे होकर के सब सुन रही है। ब्राह्मण देवता ने कहा कि अपनी स्त्री से देवी कल जो राक्षस के यहाँ एक मनुष्य की जो पारी है उसका मैं चला जाऊंगा क्योंकि मेरा धर्म है कि एक प्रकार से कुटुंब को बचा करके अपना प्राण देकर के भी कुटुंब को बचाना चाहिए और तेरे जाने से थी तो समझो कि फिर इस बालकों का पालन कौन करेगा। वो स्त्री कहती है स्वामी से कि प्रभु मेरा ये धर्म है कि अपना प्राण देकर के भी पति का प्राण बचाना इसलिए मैं उसकी भेंट में चली जाऊंगी और समझो कि मेरे बिना तो काम चल जाएगा किंतु आपके बिना काम नहीं चलेगा। बिना जीविका के बिना काम कैसे चलेगा, आपसे ही हमारे सबकी जीविका चलती है। एक उनके लड़की थी विवाह के योग, वो लड़की बोली अपने माता और पिता से पिताजी कल उस राक्षस की भेंट में मुझको आप भेज क्योंकि मेरा किसी के साथ में विवाह करोगे तो आप ये समझ लो कि लड़की का विवाह कर दिया। माता पिता ने कहा कि बेटी विवाह करने से तुम उनके भागी होंगे और राक्षस की भेंट में तुमको भेजेंगे तो पाप के भागी होंगे।